بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين حضرات. یہ کسی صاحب نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ ہر ولی اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو اس کی آزمائش کے لیے مقرر ہوتا ہے؟ عمومی طور پر ایسا ہی دیکھا گیا ہے. یہ صرف ولی اللہ پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ ہر وہ آدمی جو نیکی کی راہ پہ چلتا ہے اس کو لوگ تنگ کرتے ہی رہتے ہیں. اولیاء کرام کے بارے میں ایک بات یہ بہت مشہور ہے کہ وہ ولی اللہ ہی نہیں ہے جس کے مخالفین کی تعداد اس کے چاہنے والوں سے زیادہ نہ ہو. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ولی اللہ کے چاہنے والوں کی تعداد 1/3 ہوتی ہے اور اس کے مخالفین کی تعداد 2/3 ہوتی ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر ولی اللہ کی زندگی میں ایسا ایک نہ ایک آدمی رہتا ہے جو اس کی زندگی کو اجیرن کیے رکھتا ہے, ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے, اور شاید اس کا ہونا ضروری بھی ہے. اس لیے کہ ولی اللہ کا ایک طرح سے وہ کنٹینیوس کنسسٹنٹ ریفریشر کورس ہے کہ وہ شخص ولی اللہ کو دکھ دیتا رہے گا اور ولی اللہ اسے بڑی خاموشی اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ برداشت کرتا رہے گا کہ اسے حکم یہی ہے. تو اس کی برداشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اس کے صبر میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور اس کے اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کی پرواز بڑھتی رہتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کون سا عمل کیا جائے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل قرب اور دیدار نصیب ہو جائے. بڑا آسان سا جواب ہے اس کا, بڑا مختصر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار یا محبت نہیں بلکہ عشق کیا جائے. تو جب آدمی عشق کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں ڈوبا رہے گا ہر وقت, اور جب تصور میں ڈوبا رہے گا تو انسان کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رہے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوگی, دیدار بھی نصیب ہو جائے گا, اور اگر خاص رحمت فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گفتگو بھی ہو جائے گی. ایک اور کسی صاحب نے چٹ بھیجی ہوئی ہے کہ نوافل نماز جو 9 سے 10 کے درمیان آپ نے پڑھنے کے لیے کہا ہے, اگر جمعے والے دن آپ کی جاب 9 بجے سٹارٹ ہو تو کوئی حل ہے اس معاملے کا؟ اس کا بڑا سادہ سا حل ہے کہ نہ پڑھا جائے اسے. اگر ایک جگہ ہم جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہاں آفس ٹائمنگز 7 to 2 ہوں گے, صبح 7 سے 2 بجے تک, تو اگر ہم یہ ان سے کہیں کہ صاحب 7 بجے تو پھر مشکل ہے, وہ تو مجھے سونے کا وقت ہوتا ہے, تو آپ یوں کر لیجئے کہ آفس ٹائمنگ چینج کر کے اس کو 9 to 5 کر لیجئے. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ آفس ٹائمنگ تو چینج نہیں ہو سکتے, آپ کوئی اور جاب دیکھ لیجیے. اگر خواہش ہماری یہ ہے کہ ہم رب کی راہ پر چلیں تو جیسے دعاؤں کے معاملے میں رب تعالی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تو مرضی کا مالک ہے, تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کچھ کرنے کے لیے, کسی کی مجال نہیں کہ تیری بغیر اجازت کوئی سفارش کر سکے, تو مالک کل ہے, تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا, और फौरन ही उसको हम ये सजेस्ट करते हैं कि हमारी ट्रांसफर जरा शेख उपरे तो कर दो। अब ये हमारे गुफ्तगु में एक तजाद है कि कह रब को कुछ रहे हैं और साथ ही हम उसको ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे लिए तुमने क्या करना है, शेख उपरे ट्रांसफर कर दो। इसी तरह ये है कि अगर हम कहते हैं कि हमें रब के करीब जाना है, उसकी कुर्बत चाहिए, उससे कुर्बत का ताल्लुक चाहिए, तो उस प्रोसेस में अगर कोई ऐसी इबादत है कि जिसमें हमारे कहीं मामूल में थोड़ी सी तब्दीली हमें करनी पड़ती है तो हम उसको चेंज करते हैं, अपने मामूल को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते, तो इसका आसान तरीन हल ये होता है कि न पढ़िए, छोड़ दीजिए, कोई कंपल्शन तो नहीं है। हालांकि 9 बजे जॉब शुरू होती है, बड़े इत्मीनान से आदमी 9 बजे जॉब पर जाके और एम्प्लॉयर को कह देता कि ये आधा घंटा मैं लूंगा और इसको मैं कंपनसेट कर दूंगा कि मैं छुट्टी के बाद 2 घंटे काम करूंगा बैठ के, एम्प्लॉयर भी राजी हो जाता है। दोपहर को मुझे कोई 1.5-2 घंटे पढ़ना होती है नमाज, तो जॉब भी करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मामूल मेरा जारी है पिछले 38 ईयर्स से। तो गवर्नमेंट में भी जॉब की, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो जब प्राइवेट सेक्टर में गए तो इंटरव्यू के वक्त ही कह दिया कि साहब बड़ी मेहरबानी, आपने जॉब ऑफर कर दी, मैं सुबह 5 बजे जॉब शुरू कर सकता हूं और रात को 10 बजे तक नॉन स्टॉप काम करूंगा, कोई लंच टाइम नहीं मुझे चाहिए, कोई टी ब्रेक नहीं चाहिए, लेकिन ये 1.5-2 घंटे आप तोड़ दीजिए मुझे। तो कई लोगों ने इंटरव्यू के दौरान पूछा कि क्या आप इस दौरान आराम करते हैं दोपहर का, तो मैंने कहा साहब आराम की तो हर एक को जरूरत है, मैं झूठ तो नहीं कह सकता था कि जी हाँ आराम करता हूं, और सच बोल नहीं सकता था कि क्या करूंगा मैं। तो सीधा जवाब था कि साहब आराम की किसको जरूरत नहीं होती। वो एग्री कर गया, उन्होंने कहा ठीक है जाइए। सारी उम्र मैंने सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही जॉब की है, दरमियान में ही 1.5-2 घंटे मैं ऑफ कर लेता हूं, उसमें 1 घंटा लंच टाइम का होता है, 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लेता हूं, लेकिन उसके एवज में एम्प्लॉयर को 3 घंटे डेली दे देता हूं 5 बजे से 8 बजे तक। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूं। हल हर एक चीज का है, सिर्फ ये है कि हम जैसे दुआओं में जोर देते हैं कि नहीं वो होना चाहिए जो हमने दुआ मांगी है, करना हमने वही है जो हमने कहा है दुआ में, तो अपने आप को बदल, हम नहीं बदलेंगे, और जब उसका अंजाम बुरा निकले तो फिर जा नमाज नहीं छोड़े, जब इसको सीधा कर। तो ये थोड़ा सा एक अप्रोच की बात है, हम सॉरी बड़ी तलखी से बात की, लेकिन ये वो चीज है जो हर रोज मैं दिन में दुआ के दिनों में 2-4 मरतबा डेली मैं इसको फेस करता हूं, इस सवाल को, कि जब भी किसी को कह दें कि अच्छा ये मसला हल हो जाएगा आप फला वक्त ही पढ़ लिया कीजिए, अरे वो फला वक्त तो मैं ताश खेल रहा होता हूं साहब, वो कैसे छोड़ सकते हैं, इसको चेंज कर दें आप, रात का कर लीजिए, वो मेरी वॉक का टाइम है जनाब, मैं कैसे वो कर सकता हूं, तो इसका आप फला टाइम कर दें। हालांकि वो टाइम होता ये है कि जो टाइम दुआ में आया कि इस टाइम पर ये पढ़ो, फायदा उसी का है, उसी वक्त है, आगे पीछे करने से फायदा नहीं होता कभी। तो इसलिए मैं जरा सा, वैसे तो बड़ा बुजदिल आदमी हूं इसलिए सख्त बात कर नहीं पाता किसी से, लेकिन आज थोड़ी सख्त बात कर दी, इसके लिए माफी चाहता हूं। योम आशूर के बारे में किसी साहब ने लिखा है कि योम आशूर पे अपने घर वालों पर खर्च करने के बारे में वजाहत कर दें। बहुत सिंपल बात है, उस दिन आप कोशिश कीजिए कि आपके घर वालों की जो ख्वाहिशात हैं, जो चीज वो चाहते हैं, उनको हासिल कर दें आप, उनको उस दिन जो अंग्रेजी में कहते हैं लेट देम हैव गुड टाइम ऑन यौम आशूर, तो उससे वो मुराद है। ये सियासी सवाल है, पढ़ देता हूं लेकिन इसका जवाब देने से मैं माजरत चाहूंगा। कई सालों से पूरी दुनिया के मुसलमान मकबूजा कश्मीर के हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्जे से आजादी और पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए दुआएं करते चले आ रहे हैं। क्या अल्लाह ताला की रहमत से मुस्तकबिल में हमारा मकबूजा कश्मीर आजाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बन पाएगा? मौजूदा दौर में हिंदुस्तान को अमेरिका और दीगर अंग्रेजी ताकतों की हमायत हासिल है जो पूरी दुनिया पर हावी हैं। क्या इन ताकतों की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर हमारे मुल्क का हिस्सा बाद अज आजादी बन पाएगा? वजाहत करें। ये आलमुल असबाब है और यहां चीजों का होना या मिट जाना सबब से मुंसलिक है। हर चीज का एक सबब है, मौत का भी सबब है, मौत का बहाना बनता है। और कानून फितरत यह है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। सेब का फल अगर हम घर में लगाएंगे तो उस दरख्त से हमें सेब मिलेंगे, और अगर कीकर लगाया तो उससे कांटे मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि इस आलमुल असबाब में हम सही डायरेक्शन में कितने अखलास के साथ कितनी शिद्दत की कोशिश करते हैं, तो नतायज उसके मुताबिक रब ताला हमें बल्कि हमारी कोशिश से कई गुना बढ़ाकर हमें अता फरमा देगा। कुरान में भी क्लियरली रब ताला ने कहा हुआ है कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। रब का फैसला है ये, तो हमें रब के फैसले को सामने रख के फिर अपना एक्शन प्लान वजह करना चाहिए कि हमारी कोशिश जो है, एक तो वो पूरी शिद्दत से कोशिश हम करें, दूसरा उसमें अखलास हो, और तीसरा वो सही डायरेक्शन में हो। बस औकात होता यह है कि इंसान ने जाना होता है इस्लामाबाद की तरफ, वो रुख करता है कराची की तरफ और दौड़ना शुरू कर देता है। नतीजा यह है कि जितने वो तेज दौड़ता है उतनी तेजी से मंजिल से दूर होता है। तो कोशिश का सही डायरेक्शन में होना बड़ा जरूरी है। एक और सवाल है, पूरी दुनिया में जहां जहां पर मुसलमान ममालिक आबाद हैं, तमाम के तमाम जुल्म दहशतगर्दी का शिकार हैं और ये सिलसिला अरसा दराज से चला आ रहा है। क्या ये सिलसिला जुल्म कत्ल गारत और दहशतगर्दी का, जो कि कयामत के रोज ही खत्म होगा या इससे कबल ही रब ताला की मेहरबानी से खत्म हो जाएगा? देखने की बात यह है, क्या ये बदमनी कत्ल गारत बम धमाके ये हमेशा से ही मुसलमान ममालिक में होते रहे हैं, या पहले अमन और सुकून था बाद में शुरू हुए हैं? जैसे अभी अर्ज किया था मैंने कि हमारी बेतदबीरियों का नतीजा ये सब है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। ये गुज़श्ता 20-25 साल से हुआ है, वरना इसी पाकिस्तान में हमने कभी बम धमाके का नाम भी नहीं सुना था। आज अगर हम सही सिमत में एफर्ट कर लें और मोमिन किसी फरासत के साथ हम कोई प्लान बनाएं, अगले 2-3 साल में ठीक हो जाएगा दोबारा से। आज मेरे सारे पॉलिटिकल सवाल आ गए। ये किसी साहब ने अंग्रेजी में सवाल भिजवाया हुआ है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम्स राइज एंड फॉल ऑन अदर नेशंस? ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, दुनिया की सब तहजीबें हिस्ट्री है वो हमें असल में एक तो वाकयात बताती है कि कब क्या हुआ, लेकिन जो अकलमंद लोग हैं, कौमें हैं, वो हिस्ट्री से बाकायदा सबक सीखती हैं कि फलां जमाने में ये कुछ हुआ था और उसके नतीजे के तौर पर ये पेश आ गया था। हम वो गलती न करें, या ये इस अंदाज में भी हो सकता है कि फलां फलां वक्त सिचुएशन ऐसी थी, उस वक्त फलां कौम ने उस पर ऐसे काबू पाया और मामला दुरुस्त हो गए, तो हम उससे सबक सीखें। तो जो असगर खान ने अपनी किताब के शुरू में कहा था कि तारीख का अलमिया यह है कि तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता, वो बात बड़ी सही है। तो वो तहजीबें जो अरूज को गई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को मुतासर किया है। हम लोग जब अरूज पर गए थे तो हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया था, और जिंदगी के हर पहलू में हमारा एक मेजर कंट्रीब्यूशन था। हमने यूरोप को अंधेरों से निकाला और इल्म की रोशनी फैला दी थी वहां, हमने तहजीब को फैलाया था उस सारे इलाके में। तो कौमें जब भी अरूज को जाती हैं, उसके असर दूर दूर तक मरतब होते हैं। आज मगरिब अरूज पर है और वहां से हमें सब कुछ मिल रहा है। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुसलमान एक बार अरूज को आ जाएंगे, तो फिर मुसलमानों के इन्फ्लुएंसेस हो जाएंगे पूरी दुनिया पर। एक अगला इनका सवाल यह है कि why earning and eating halal is so important in Islam? बात यह है कि कमाना तो इस अंदाज में भी हो सकता है जिस अंदाज में आजकल हम में से 80% लोग कमाते हैं, कि वहां हलाल और हराम की परहेज नहीं है। तो जब हम रिस्क हलाल कमाने से दूर हो जाएं, तो फिर पूरे माशरे में बेचैनी और बदअमनी फैलती है कि एक ऐसी दौड़ शुरू होती है मसाबिकत की कि वो बिल आखिर तबाही तक ले जाती है इंसान को। आज जो कुछ हम देख रहे हैं कि हम कत्ल गारत में मुब्तला हो गए हैं, हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, वो इसी का नतीजा है कि हम उस मसाबकत में दाखिल हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा कमाने की दौड़। लेकिन जब हम रिस्क हलाल कमाने की तरफ माइल हो जाते हैं, तो फिर वहां पर किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। जब ज्यादती नहीं होती तो माशरे में बेचैनी नहीं पैदा होती, और जब बेचैनी पैदा नहीं होती तो अपना मान के मसले नहीं पैदा होते। ये दर हकीकत जो मुआशरे का इंसाफ है, एक तो वो इंसाफ है जो अदालतों से मिलता है, एक मुआशरे का अपना एक इंसाफ है, वो उसी वक्त कायम होता है जब हम रिस्क हलाल कमाते हैं। क्योंकि रिस्क हलाल में हम ना तो किसी का काम में रुकावट डालते हैं, ना किसी के काम को हम डिले करते हैं, ना किसी चीज के बारे में हम झूठ बोलते हैं, ना हम मिस रिपोर्टिंग करते हैं। तो जब ये सब नहीं होता तो काम बड़े स्मूथली चलते हैं। हर इंसान का काम उसके अपने वक्त पर, जो उसका जायज हक है, उसको मिलता रहता है, नतीजा बेचैनी नहीं पैदा होती। और जहां तक खाने की बात है हलाल, अब रफ्ता रफ्ता साइंस ने डिस्कवर करना शुरू कर दिया कि हर वो चीज जो रब ताला ने इंसान के लिए हलाल करार दी, उससे इंसानी जिस्म को अगर इत्तेदाल में रहा जाए तो इंसानी जिस्म को नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदा होता है। और वो तमाम चीजें जिनको रब ताला ने हराम करार दिया है, मना फरमाया है, उसके नुकसान डिस्कवर करने शुरू कर दिए साइंस ने, نتیجہ یہ ہے کہ مغرب کے اندر بھی بڑی شدت سے اس چیز پر غور کیا جا رہا ہے کہ شراب پر بین کر دیا جائے۔ ہالینڈ میں تقریباً 20-25 سال پہلے ایک مہم چلی تھی کہ سور کا گوشت نہ کھایا جائے۔ تو یہ جتنی حرام چیزیں قرار دی گئی ہیں ان میں نقصان ہے، بیماری ہے انسان کے لیے، اس کی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو وقت جو گزر رہا ہے، علم انسان کا بڑھ رہا ہے، انسان یہ چیزیں ڈسکور کرنا شروع کر دیا اس نے کہ یہ کچھ چیزیں حلال کیوں قرار دے دی گئیں اور دوسری حرام ہیں، اس میں ہمارے ہی فائدہ ہے۔ ایک اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ واٹ شوڈ بی دی مسلم لائف اسٹائل ایز این انڈیویجول اینڈ ایز نیشن، اور ود ان بریکٹ انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل اینڈ گلوبل پرسپیکٹو ان ٹوڈیز ٹائم۔ مسلمان کا اصل لائف اسٹائل تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن اس لائف اسٹائل کو ہم صرف پہناوے تک محدود نہ کریں یا ایک حجرے میں رہائش تک محدود نہ کریں، بلکہ لائف اسٹائل سے ہمارا مراد یہ ہے کہ ہم اسی اسٹائل میں زندہ رہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، کہ اپنے لوگوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی بے پناہ قسم کی ٹالرنس موجود تھی، پھر اف اور درگزر بے تحاشا تھی، ایثار اور قربانی دوسروں کے لیے بہت زیادہ، اور اپنی زندگی کو سادہ رکھا جائے۔ یہ لائف سٹائل اگر آج بھی ہم اپنا لیں تو ہم سب کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گے، اپنے دشمنوں کی بھی۔ مسلمان کا اصل لائف سٹائل تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ ایسا سوال ہے صاحب جس کا جواب میرے علم کی بس میں تو نہیں، جو کچھ تھوڑا بہت میں جانتا ہوں۔ رائٹس اینڈ ریسپیکٹ آف ہیومن بینگ آفٹر ڈیتھ، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ آفٹر ڈیتھ انسان کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں اور انسان کی عزت، وہ ڈپینڈ کرتی ہے سولی انسان کے اعمال پر، انسان کے تقوی پر۔ جتنے صالح اعمال ہوں گے انسان کے دنیا میں، آخرت میں جب اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور اس پر بیس کر کے فیصلہ ہوگا، تو جتنے نیک اعمال ہوں گے اتنا ہی وہ پھل پائے گا۔ یہی اس کا حق ہے کہ جو اس کے اعمال ہیں اس کے مطابق اس کو اس کا پھل دے دیا جائے۔ اور اللہ تعالی چونکہ رحیم و کریم ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ اس کا پھل اس کے اعمال سے کہیں زیادہ بڑھا کر عطا فرما دے، لیکن بنیاد اس کے اعمال ہوں گے، اس کے حقوق ڈپینڈ کرتے ہیں کہ انسان کے اعمال کیا ہیں۔ اور جہاں تک ریسپیکٹ کی بات ہے تو انسان نے کس تقوی سے اس دنیا میں زندگی گزاری ہے اس کا پھل اس کو آخرت میں مل جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن میرے دانش میں بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ان وچ سرکمسٹانسز اے مسلم کین یوز ابیوسو لینگویج ود ادرز؟ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو ایون دوران جنگ دشمن کے ساتھ بھی ابیوسو لینگویج وہ استعمال نہیں کرے گا، فار ٹو ریزنز۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن گفتگو کمال کا تھا، آپ کی زبان سے کبھی کسی نے کوئی فاؤل ورڈ نہیں سنا۔ فاؤل لینگویج تو بڑی دور کی بات ہے، ایک فاؤل ورڈ نہیں آیا زبان پر۔ تو بحثیت امتی کے مجھ پر یہ فرض ہے कि मैं किसी भी सर्कमस्टांसिस में, अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, मेरी जुबान का हुस्न खराब नहीं होना चाहिए, वो हुस्न गुफ्तगू वो कायम रहे। बल्कि दो रोज पहले एक टीवी चैनल पर मैं कुछ कमेंट सुन रहा था एंकर के, तो मुझे दुख हुआ कि हम मुसलमान हैं और हमें दूसरे लोगों से सरबुलंद रहना चाहिए, चाहे हालात कितनी खराब क्यों न हो जाएं। तो हम दुश्मन का भी जिक्र जब करें तो वहां भी तमीज और तहजीब का दामन न छोड़ें। तमीज के साथ इसलिए कि वो उसकी इज्जत हम नहीं कर रहे, दुश्मन की इज्जत नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी शख्सियत का इजहार कर रहे हैं कि हम अंदर से क्या हैं। तो ये एक महफिल में बैठे गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने उनसे ये अर्ज किया कि मैं ये समझता हूं कि किसी शख्स की असलियत को अगर आपने जानना है तो उसको उस वक्त परखिए जब वो अपने दुश्मन का जिक्र कर रहा हो, कि अपने दुश्मन के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करेगा अपने मुखालिफ की, उससे उसकी शख्सियत जो अंदर छुपी है उसकी, वो खुलकर सामने आ जाएगी। जो खानदानी लोग हैं वो अपने दुश्मन को भी एहतराम देते हैं, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन किसी को इज्जत और एहतराम देना वो खुद हमारी असलियत को जाहिर कर देता है। तो ये एब्यूसिव लैंग्वेज, पहली बात तो ये है कि बहसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के, हमारी जुबान पर तो कोई फाउल वर्ड आना ही नहीं चाहिए, एक बात तो ये। दूसरा कि रब ताला बड़ा खुश बयान है और खुश बयानी को पसंद करता है, तो जो इंसान अपनी गुफ्तगू का हुस्न बरकरार रखता है बदतरीन सूरत हाल में भी, तो सुन्नत रब पर भी अमल कर रहा है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी। मुसलमान का हुस्न गुफ्तार कभी नहीं जाता, वो कायम रहता है। एक साहब से आज मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे दिमाग में था कि मैं इतवार को एक चीज के बारे में बात करूंगा। जनाब हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बुलंद पाया बुजुर्ग गुजरे हैं, आप कोनिया में आराम फरमा रहे हैं, और कोनिया में आपका जो मजार मुबारक है वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इस दीवार से उस दीवार तक लंबाई इससे जरा कम होगी, और इस लंबाई में दो कमरे बने हुए हैं। पहला कमरा है उसमें कुछ भी नहीं है, उससे नेक्स्ट एक ही लाइन में दो कमरे हैं, उसके नेक्स्ट कमरे में जनाब शाह शम्स तबरेज़ साहब आराम फरमा रहे हैं। तो ऐसी बुलंद हस्ती हैं कि लोगों का इम्प्रेशन यही है, मेरा अपना भी इम्प्रेशन यही है कि जब हम जाके वहाँ फातिहा के लिए हाथ उठाते हैं, खड़े होते हैं, तो एक बहुत डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इम्प्रेशन आता है इंसान को, एज इफ कि आदमी किसी शहंशाह के दरबार में खड़ा है, वो कैफियत तारी होती है इंसान पे। तो मैं ये समझा पहले कि शायद मैं ही हूं, लेकिन जितने लोग भी वहां गए सबका इम्प्रेशन यही था कि वहां जब हम फातिहा के लिए हाथ उठाते हैं, आंखें बंद होती हैं, तो एक अजीब तासुर कायम होता है इंसान पर कि बहुत बड़ा शहनशाह है जिसने दरबार सजाया हुआ है और इंसान उस दरबार में खड़ा है। उन्होंने अपनी आप बीती में एक बहुत कमाल की चीज बयान फरमाई जिसका रूहानियत से बहुत ताल्लुक है। जनाब शाह शम्स तबरेज साहब फरमाते हैं कि मैं जब किसी शख्स की महफिल में जाता था तो वहां बैठता था, या कोई शख्स मेरे पास आ जाता था और मेरी महफिल में बैठता था, तो मैं दोनों मौकों पर एक सवाल पूछता था कि आप सुनने वालों में से हैं या कहने वालों में से हैं। तो अगर तो जवाब यह आता था कि मैं कहने वालों में से हूं, बोलने वालों में से हूं, तो मैं चुपचाप उठ के चला आता था या उस आदमी को महफिल से रुखसत कर देता था। लेकिन अगर जवाब यह आता था कि मैं सुनने वालों में से हूं, तो मैं मुतमईन होकर बैठ जाता था वहां महफिल में, और फिर मैं अर्ज करता था कि अब आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा। ये कमाल की बात है। रूहानियत की राह में जो मुर्शद हैं या उस्ताद हैं या गाइड हैं, जो भी उन्हें कहना चाहें आप, वो उस मारूफ तरीके से अपने शागिर्दों पर तालीम इम्पार्ट नहीं करते कि क्लासरूम है, उसमें टीचर खड़ा है और ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर डायग्राम्स बना बना के समझा भी रहा है, लेक्चर दे रहा है। रूहानियत की राह में ऐसा नहीं है। रूहानियत की राह में जो इल्म पास ऑन किया जाता है, वो गुफ्तगू के जरिए ही किया जाता है कि मुर्शद साहब तशरीफ रखे हुए हैं, शागिर्द वहां बैठे हैं, तो मुर्शद साहब किसी बात का जवाब दे रहे हैं या किसी बात को बयान कर रहे हैं, कोई अपना एक एक्सपीरियंस बयान कर रहे हैं, कोई वाकया बयान कर रहे हैं। वहां बैठने वाले उनके शागिर्द खामोश होके सुनते हैं, उस सुनने में वो इल्म सीखते चले जाते हैं। तो ये जो सवाल पूछते थे जनाब शाह शम्स तबरेज साहब, उसके पीछे एक बड़ी हिकमत पोशीदा है कि वो शख्स जो बोलने वाला है वो इल्म से तही दामन है, उसके पास इल्म नहीं हो सकता कभी, इसलिए कि ये तो सुनने से मिलेगा इल्म, सुना तो है ही नहीं उसने, तो उसके पास इल्म क्या होगा, उसके पास बैठने का फायदा क्या है। लेकिन जो शख्स सुनने का आदी है, सुनने वाला है, सारी उम्र लोगों की बातों को सुन सुन के उससे इल्म चुनता रहा है, तो उसके पास इल्म जमा हुआ है। अगर उसके पास बैठा जाए और उसे बोलने पर रुकसा दिया जाए, तो फिर जो कुछ बोलेगा वो इल्म होगा। तो उसके पास बैठने का फायदा यह है कि इंसान इल्म सीखता जाएगा। मुर्शिद के पास हम जाके बैठते हैं तो उसके बहुत से अदब आदाब हैं। हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि हमें मुर्शिद से किसी बात पर जिद नहीं करनी चाहिए, वो जहर कातिल है। जब हम अपने मुर्शिद से जिद करते हैं किसी बात पर, खा कोई हो, तो वो खुद जिद करने वाले के लिए वो चीज जहर कातिल बन जाएगी कि वो मुर्शिद से दूर हो जाएगा। मुर्शिद के साथ जो सही रवैया, वो है जो फौज के बारे में हमारे यहां मशहूर है, सही या गलत उससे गर्ज नहीं है, मशहूर है कि वहां सिर्फ यस सर एक लफ्ज है। तो अगर हम मुर्शिद के साथ, रूहानियत में ये बहुत है, फौज में ऐसा नहीं है लेकिन रूहानियत में बहुत है कि यहां मुर्शिद की हर बात पर यस सर ही कहा जाता है, चाहे दिल माने या न माने उस बात को, अकल तस्लीम करे या ना करे, इंसान जिस्मानी या जहनी तौर पर कुछ करने के लिए तैयार हो या ना हो, मुर्शिद की बात पर यसर ही कह देना वही आफियत का रास्ता रहता है। हम लोग जब एक ब्लेंड तैयार कर लेते हैं कि दुनियावी अदब आदाब, दुनियावी तौर तरीके वो, और रूहानियत में जो तौर तरीके होने चाहिए, जब उसका एक मलगूबा हम तैयार करते हैं दोनों को मिक्स करके, तो फिर न वो रूहानियत में काम आ पाते हैं न दुनिया में। तो मुर्शिद के पास जब हम बैठें तो सिर्फ खामोश रहें, और जुबान हम उस वक्त खोलें जब मुर्शिद हमसे कोई चीज पूछ लें, सवाल कर लें मुर्शिद हमसे, वरना हम सुने कि सुनने से इल्म मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मुर्शिद की बात को चाहे अंदर से हम तस्लीम करें या ना करें, उसका जवाब यह सर में जाए अगर, यह और बात है कि हमें पता ही चलेगा कि हमारी अकल जिसको कह रही थी कि ये बात गलत है, वो एंड पर जाके पता चलता है कि बात मुर्शिद ही की ठीक थी, चाहे वक्त गुजर गया हो कुछ। जिस तरह मैं एक बात हमेशा लोगों से अर्ज करता हूं कि हमारा इल्म, हमारा तजर्बा, हमारी विजडम, खा चीख चीख के कह रही हो कि वालदा ने जो हुक्म दिया है ये सरासर घाटे का सौदा है, लेकिन अगर हम वालदा की उस बात को घाटे का सौदा समझ के ही, ये जानते हुए भी कि ये सरासर घाटे का सौदा है, अपनी वालदा की बात को मान लें कि ठीक है ऐसा हो जाएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं कि अगर एक बहुत अच्छी जॉब पर हैं हम लोग और वालदा वन फाइन मॉर्निंग हमें कह देती हैं कि तुम इससे इस्तीफा दे दो, अब हमें अच्छी तरह मालूम है कि दूसरी जॉब मिलने में एक लंबा अरसा लग जाएगा, बेरोजगारी होगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा, फाके आ जाएंगे, लेकिन अगर ये सोच के कि हमारी वालदा ने हुक्म दिया है, हम उस कुएं में छलांग लगा देते हैं कि ठीक है जी इस्तीफा दे दिया। तो मेरा कहना यह है कि जब हम अपनी वालदा का हुक्म मानते हैं बावजूद सब कुछ जानने के कि नुकसान का सौदा है, तो रब ताला अपनी रहमत के सदके उस सौदे को घाटे से मुनाफा बख्श बना देता है। तो आपका टाइम हो गया, इस बात को इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फर्दर एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।